दानियल की पुस्तक संख्या 53 भविष्य सूचक दर्शनों का अनावरण। दानियल के अनुभव के माध्यम से अंतिम दिनों की समझ।
सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों के बारे में उन दिनों से अधिक बोलते हैं जिनमें वे जीते थे।
प्राचीन प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने अपने समय की तुलना में हमारे समय के लिए अधिक कहा, इसलिए उनकी भविष्यवाणियां हमारे लिए प्रभावी हैं। अब ये सब बातें उनके साथ उदाहरण के लिए हुई और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, जिन पर जगत के अंत का समय आ पहुंचा है। 1 कुरिन्थियों 10:11, उन्होंने ये बातें अपने लिए नहीं पर हमारे लिए सेवकाई की, जिनके विषय में अब तुम्हें उन लोगों के द्वारा बताया गया है जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें सुसमाचार सुनाया। इन बातों को स्वर्गदूत भी झाँक कर देखने की अभिलाषा रखते हैं। 1 पत्रस 1:12। बाइबल ने अपनी निधियों को इस अंतिम पीढ़ी के लिए संचित किया है और एक साथ बांध रखा है। पुराने नियम के इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर कार्यवाहियां इन अंतिम दिनों में कलीसिया में पुनः घटित हुई हैं और हो रही हैं। सिलेक्टेड मैसेजेस, बुक 3:338-390।
दानियल परमेश्वर की प्रजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो अंतिम दिनों में भविष्यवाणी के वचन के माध्यम से ये जान लेते हैं कि वे तितर बितर कर दिए गए हैं। जब वे इस तथ्य के प्रति जागते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे लैव व्यवस्था 26 की प्रार्थना को पूरा करें और साथ ही वो प्रार्थना भी करें जिससे वे उस अंतिम भविष्यवाणी के रहस्य को समझ सकें जो अनुग्रह काल समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है, जैसा कि अध्याय 2 में दानियल की प्रार्थना द्वारा दर्शाया गया है। यदि और जब वे दानियल के अनुभव में प्रवेश करते हैं तो स्वर्गदूत गब्रियल उन्हें स्पर्श करेगा, उन्हें बताएगा और उनसे बात करेगा ताकि उन्हें बुद्धि और समझ दी जा सके। बुद्धिमान वे हैं जो जब कोई भविष्यवाणी का रहस्य खोला जाता है तब ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं।
और उसने मुझे सूचित किया और मुझसे बातें की और कहा, हे दानियल, मैं अब तुझे बुद्धि और समझ देने को आया हूँ। तेरी प्रार्थनाओं के आरंभ में ही आज्ञा निकल गई और मैं तुझे बताने को आया हूँ, क्योंकि तू अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस बात को समझ और दर्शन पर विचार कर। दानियल 9:22-23।
वह दर्शन जिस पर दानियल को विचार करने के लिए कहा गया है प्रकट रूप का मारे दर्शन है। गब्रियल ने अध्याय 8 में उसे सौंपे गए कार्य दानियल को मारे दर्शन समझाना को अभी पूरा नहीं किया था। अध्याय 9 में वह व्याख्या को पूरा करने के लिए लौट आया है। अध्याय 9 में दानियल अब बाबुल के राज्यकाल में नहीं बल्कि मादी फारसी साम्राज्य के इतिहास में है। जब गब्रियल दानियल को विषय को समझो और दर्शन पर विचार करो का निर्देश देता है तो वो मानसिक पृथक्करण की एक प्रक्रिया की पहचान कर रहा है जिसे वो चाहता है कि दानियल अमल में लाए। समझना और विचार करना के रूप में अनुदित दोनों शब्द वास्तव में एक ही इब्रानी शब्द है। वो शब्द बेन है और इसका अर्थ है मानसिक रूप से अलग करना। विषय के रूप में अनुदित इब्रानी शब्द दबर है और इसका अर्थ है वचन। इसलिए गब्रियल दानियल को और उन सब को जिनका वो अंतिम दिनों में प्रतिनिधित्व करता है ये सूचित कर रहा है कि वे सत्य के वचन को ठीक प्रकार से विभाजित करें।
अध्ययन कर कि तू परमेश्वर के सामने स्वीकार्य ठहरे, ऐसा काम करने वाला जिसे लज्जित न होना पड़े, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करता हो। 2 तीमुथियुस 2:15।
शब्द मैटर का प्रयोग दानियल द्वारा अध्याय 10:1 में भी किया गया है, जहां इसे 3 बार थिंग के रूप में अनुवादित किया गया है।
फारस के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जिसका नाम बेल्त शसर रखा गया था, एक बात प्रकट की गई और वो बात सत्य थी, परंतु नियुक्त समय दीर्घ था और उसने उस बात को समझ लिया और उस दर्शन का अर्थ भी समझ लिया। दानियल 10:11।
उस पद में विजन शब्द मरे रूप के दर्शन है और दानियल को वस्तु मामला तथा दर्शन मरे दोनों की समझ थी। अध्याय 9:23 में गैब्रियल ने दानियल को मामले और दर्शन को ठीक प्रकार से विभाजित करने का निर्देश दिया और अध्याय 10:1 में उसके पास मामले वस्तु और दर्शन मारे दोनों की समझ है। अध्याय 9 में गैब्रियल डैनियल को मामले और दर्शन के बीच भेद को पहचानने, ठीक प्रकार से विभाजित करने के लिए बता रहा है। दर्शन मारे प्रकार का दर्शन है और मामला या वस्तु छाजोन प्रकार का दर्शन है। अध्याय 8 में दोनों दर्शनों की पहचान की गई है और एक भेद पर ध्यान दिलाया गया है, क्योंकि दानियल छाजोन दर्शन को समझना चाहता था, परंतु गैब्रियल को दानियल को मारेह दर्शन समझाने का निर्देश दिया गया था। जब गैब्रियल दानियल को बात और दर्शन समझाने का अपना कार्य आरंभ करता है, तो वो दानियल को ये ध्यान दिलाता है कि वे दो अलग अलग दर्शन है।
और उसने मुझे समझाया और मुझसे बात की और कहा, हे दानियल, मैं अब तुझे बुद्धि और समझ देने को निकला हूँ। तेरी प्रार्थनाओं के आरंभ में ही आज्ञा निकल गई और तुझे बताने मैं आया हूँ, क्योंकि तू अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस बात को समझ और दर्शन पर ध्यान कर। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, अपराध का अंत करने, पाप का अंत करने, अधर्म के लिए मेल मिलाप कराने, शाश्वत धार्मिकता लाने, दर्शन और भविष्यवाणी पर मुहर करने और परम पवित्र का अभिषेक करने के लिए। इसलिए जान और समझ कि यरूशलेम को पुनः स्थापित और बनाया जाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त राजकुमार तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। उस समय सड़क और परकोटा फिर बनाए जाएंगे, हालांकि संकट भरे समय होंगे, और 62 सप्ताहों के बाद अभिषिक्त काट डाला जाएगा, परंतु अपने लिए नहीं, और आने वाले एक राजकुमार की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी, और उसका अंत बाढ़ के साथ होगा, और युद्ध के अंत तक उजाड़ ठहराए गए हैं, और वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा दृढ़ करेगा, और 1 सप्ताह के बीच में वो बलि और भेंट को बंद कर देगा, और घृणित बातों की बहुतायत के कारण वो उजाड़ करेगा। ये तब तक रहेगा जब तक समाप्ति ना हो जाए, और जो ठहराया गया है वो उजाड़े हुए पर उंडेला जाएगा। दानियल 9:22-23।
गैब्रियल चाहता था कि दानियल ये पहचान ले कि छाजोन दर्शन और मारे दर्शन दोनों के तत्व उस व्याख्या में प्रतिनिधित्व किए जाएंगे जो वो दानियल को देने जा रहा था। वो व्याख्या दोनों दर्शनों को संबोधित करने वाली थी, और ये दानियल की जिम्मेदारी थी कि वो उस दर्शन को, जो पवित्र स्थान और सेना को रौंदे जाने से संबंधित था, उस दर्शन से सही ढंग से अलग करे, जो 22 अक्टूबर 1844 को अत्यंत पवित्र स्थान में मसीह के प्रकट होने की ओर ले गया। गैब्रियल ये बताता है कि 574 ईसा पूर्व में आर्टाक्सर्क्सिस के आदेश से संध्याओं और प्रातः कालों के दर्शन के 2300 वर्षों में से विशेष रूप से यहूदियों के लिए 490 वर्ष काट दिए जाएंगे। अभी उद्धृत पदों में डिटर्मिंड शब्द 3 बार आता है, परंतु उन पदों में डिटर्मिंड के रूप में अनुदित 2 अलग-अलग इब्रानी शब्द हैं। डिटर्मिंड का पहला उल्लेख पद 24 में है, और वो इब्रानी शब्द हथक है, जिसका अर्थ काट देना है। ये बताता है कि इसराइल को एक परीक्षा काल दिया गया था, जो आर्टाक्सर्क्सिस के 3रे आदेश से शुरू हुआ, और जिसका अंत 334 में स्तेफनिस को पत्थरों से मारे जाने पर हुआ। 490 वर्षों को काटकर अलग किया गया था, और वे 2300 वर्षों की लंबी भविष्यवाणी के भीतर एक छोटी भविष्य सूचक अवधि का प्रतिनिधित्व करते थे। 490 की संख्या परीक्षा काल का प्रतीक है, जैसा कि यीशु ने प्रमाणित किया।
तब पतरस उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, मेरा भाई मेरे विरुद्ध कितनी बार पाप करे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 70 × 7 बार तक। मत्ती 18:22 से।
क्षमा का भी एक अंत होता है, और उस अंत का प्रतिनिधित्व 490 संख्या द्वारा किया गया है। 490 वर्ष यहूदियों के लिए उनकी मुक्ति से लेकर जब उन्होंने अपने परीक्षा काल का प्याला स्तेफनुस पर पत्थर चलाए जाने पर भर दिया तक के परीक्षा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 490 वर्ष का संबंध लैवीय व्यवस्था 26 में 7 गुना के शाप से भी है। बाइबल में केवल 2 स्थान ऐसे हैं जहां भूमि के अपने सप्तों का आनंद लेने का उल्लेख है। पहला लैवीय व्यवस्था 26 में मिलता है।
और यदि इन सब के बाद भी तुम मेरी नहीं सुनोगे बल्कि मेरे विरुद्ध चलोगे, तो मैं भी क्रोध में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, और मैं, हाँ मैं ही, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा, और तुम अपने पुत्रों का मांस खाओगे और अपनी पुत्रियों का मांस खाओगे, और मैं तुम्हारे ऊंचे स्थानों का नाश कर दूंगा और तुम्हारी मूर्तियों को काट कर गिराऊंगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारी मूर्तियों के शवों पर फेंक दूंगा, और मेरा मन तुमसे घृणा करेगा, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ कर दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ कर दूंगा, और तुम्हारी सुगंधित अर्पणों की सुगंध मैं नहीं सूंघूंगा, और मैं उस देश को उजाड़ कर दूंगा, और जो शत्रु उसमें बसते होंगे वे उस पर अचंभित होंगे, और मैं तुम्हें अन्य जातियों में बिखेर दूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार खींच लाऊंगा, और तुम्हारा देश उजाड़ हो जाएगा और तुम्हारे नगर सुनसान। तब उस देश को, जब तक वो उजाड़ पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, अपने विश्राम दिनों का आनंद मिलेगा। हाँ, तब देश विश्राम करेगा और अपने विश्राम दिनों का आनंद उठाएगा। जब तक वो उजाड़ पड़ा रहेगा वो विश्राम करता रहेगा, क्योंकि जब तुम उसमें बसे हुए थे तब तुम्हारे विश्राम दिनों में उसे विश्राम नहीं मिला था। लेव्य व्यवस्था 26:30-30 पॉम।
7 गुना की सजा, जिसका 26वें अध्याय में 4 बार उल्लेख है, ये बताती है कि जब परमेश्वर की प्रजा तितर बितर की जाएगी तब भूमि अपने सप्तों का आनंद लेगी। दानियल और 3 धर्मनिष्ठ पुरुष मूसा के श्राप की पूर्ति में शत्रुओं की भूमि में बिखेर दिए गए थे, और 70 वर्षों का वो बिखराव 2520 वर्षों के बिखराव का एक प्रतीकात्मक पाठ था। ये एक भविष्यद्वाणी संबंधी प्रतीकात्मक पाठ था जो इजेबेल के पहरतन उत्पीड़न के दौरान एलिया के 3.5 वर्ष के अकाल के समान था। वे 3.5 वर्ष क्रम 3.5 भविष्य सूचक वर्षों के प्रतीक थे जो सन 538 से 1798 के पापाई धल्प थे। 70 वर्ष 7 गुना का प्रतीक थे, जैसे 3.5 वर्ष 1260 वर्षों की मरुभूमि अवधि का प्रतीक थे। यर्मया द्वारा बताए गए दानियल की बंधुआई के 70 वर्ष 490 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते थे।
और उनके पितरों के प्रभु परमेश्वर ने अपनी प्रजा और अपने निवास स्थान पर दया के कारण अपने दूतों के द्वारा उनके पास संदेश भेजे। वो प्रातःकाल से उठकर भेजता रहा, परंतु उन्होंने परमेश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके वचनों को तुच्छ जाना और उसके भविष्यद्वक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जब तक कि प्रभु का बंधन क्रोध उसकी प्रजा के विरुद्ध इस प्रकार भड़कर उठा कि कोई उपचार न रहा। इसलिए उसने उन पर कसदियों का राजा ले आया, जिसने उनके पवित्र स्थान में ही तलवार से उनके जवानों को मार डाला, और उसने न जवान पर दया की, न कुमारी पर, न बूढ़े पर, न बुढ़ापे से झुके हुए पर। प्रभु ने उन्हें सबको उसके हाथ में सौंप दिया, और परमेश्वर के घर के सब पात्र, बड़े और छोटे, और प्रभु के भवन के खजाने और राजा तथा उसके सरदारों के खजाने, इन सबको वो बाबुल ले गया। और उन्होंने परमेश्वर के घर को जला दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया, और उसके सब महलों को आग से जला दिया, और उसके सब सुंदर पात्रों को नष्ट कर दिया। और जो लोग तलवार से बच निकले थे उन्हें वो बंधुआ बनाकर बाबुल ले गया, जहां वे फारस के राज्य के राज्यकाल तक उसके और उसके पुत्रों के दास बने रहे। ये इसलिए हुआ कि यिर्मयाह के मुख से कही हुई प्रभु की वाणी पूरी हो, जब तक कि देश ने अपने विश्राम दिनों का आनंद न ले लिया, क्योंकि जितने समय तक वो उजाड़ पड़ा रहा उसने विश्राम किया, ताकि 70 वर्ष पूरे हो जाए, फिर फारस के राजा कुरेश के प्रथम वर्ष में, ताकि यिर्मयाह के मुख से कही हुई प्रभु की वाणी पूरी हो, प्रभु ने फारस के राजा कुरेश की आत्मा को उभारा, और उसने अपने सारे राज्य में एक घोषणा कराई, और उसे लिखकर भी भेजा कि फारस का राजा कुरेश यूं कहता है, आकाश के प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी के सब राज्य मुझे दिए हैं, और उसने मुझ पर ये आज्ञा रखी है कि मैं यहूदा में, जो यरूशलेम है, वहां उसके लिए एक घर बनवाऊं। उसकी सारी प्रजा में से तुम में कौन है उसका परमेश्वर प्रभु उसके संग हो और वो ऊपर जाए। 2 इतिहास 36:15-23।
बाइबल में भूमि के अपने सप्त वर्षों का आनंद लेने के केवल दो उल्लेख हैं, और वे परमेश्वर के लोगों के तितर बितर होने तथा 70 वर्षों की बंधुवाई से संबंधित है, जो ऐसा काल दर्शाते थे जिससे भूमि अपने सप्त वर्षों का आनंद ले सके। ये उन सप्त वर्षों की संख्या के बराबर था जिनमें यहूदियों ने भूमि को विश्राम करने नहीं दिया। भूमि का 70 वर्षों तक विश्राम करना उन कुल वर्षों का प्रतिनिधित्व करता था जिनमें भूमि को विश्राम देने की आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। सरल गणित बताती है कि 490 वर्षों के विद्रोह में कुल 70 वर्ष ऐसे थे जिनमें भूमि ने विश्राम नहीं किया था। 2300 वर्षों में से 490 वर्ष यहूदियों के लिए एक परीक्षण काल के रूप में काटकर अलग किए गए थे, और उन 490 वर्षों का लेव्य व्यवस्था 26 के 7 गुना के बिखराव से सीधा संबंध है। रौंदे जाने के छेजौन दर्शन और 2300 वर्षों के अंत में होने वाले प्रकटन का मारह दर्शन एक दूसरे से भिन्न है, परंतु उनका आपस में सीधा संबंध है। जैसे दानियल ने किया था, वैसे ही परमेश्वर के लोगों को इन दोनों दर्शनों का सही रीति से भेद करना है, और साथ ही उनके परस्पर संबंध को पहचानना भी है। 70 वर्षों के निर्वासन ने, जिसके परिणाम स्वरूप 3 फरमान जारी हुए जिनसे यहूदियों को लौटकर यरूशलेम का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मिली, भूमि को विश्राम देने की वाचा के विरुद्ध यहूदियों के 490 वर्षों के विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया। जब तीसरे फरमान ने उनके लौटने और पुनर्निर्माण के अवसर को चिन्हित किया, तो उन्हें 490 वर्षों का परिवीक्षा काल दिया गया, क्योंकि उन्हें उसी अवधि से परखा गया था जिसमें उनकी अवज्ञा ने यरूशलेम के विनाश और उनके तितर बितर होने को जन्म दिया था। दूसरे 490 वर्षों के अंत में उनकी अवज्ञा एक बार फिर यरूशलेम के विनाश और अन्य जातियों के बीच उनके तितर बितर होने का कारण बनेगी। 70 वर्षीय बंदीवास का जो विखराव हुआ, उससे पहले 490 वर्षों तक विद्रोह चला, और फिर उसी 70 वर्षीय बंदीवास के बाद आगे के विद्रोह के 490 वर्ष और हुए। प्रथम 490 वर्षों का काल, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि के विश्राम के 70 वर्ष हुए, यरूशलेम के विनाश के साथ अपने समापन पर पहुंच गया था। 2300 वर्षों में से काटे गए उन 490 वर्षों के अंत में यरूशलेम का पुनः विनाश हुआ, क्योंकि यीशु सदैव किसी बात के अंत को उसके आरंभ से दर्शाते हैं। शाब्दिक बाबलू में शाब्दिक इसराइल की 70 वर्षों की बंधुआई 7 गुना के विखराव का एक प्रतीक थी, और बहन वाइट दर्शाती हैं कि शाब्दिक बाबुल में शाब्दिक इसराइल की 70 वर्षों की बंधुआई आध्यात्मिक बाबुल में आध्यात्मिक इसराइल की 1260 वर्षों की बंधुआई का एक प्रतिरूप थी।
पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया इस दीर्घ अनवरत उत्पीड़न के काल में उतनी ही वास्तव में बंधुआई में थी जितनी की निर्वासन काल के दौरान बाबेल में इसराइल की संतानें बंदी बनाकर रखी गई थीं। भविष्यवक्ता और राजा साचोत सात
538 से 1798 तक की 1260 वर्षों की अवधि 7 काल का एक प्रतिरूप थी। 70 वर्षों की समाप्ति पर यहूदी यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण के लिए लौट आए। 3 फरमानों के दौरान उनका लौटना मारेह दर्शन के 2300 वर्षों की शुरुआत 2794 ईसा पूर्व को चिह्नित करता है, जो 22 अक्टूबर 1894 को महापवित्र स्थान में मसीह के प्रकट होने तक ले गया। इन 3 फरमानों ने भविष्यवाणी की अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया, और इस अवधि के आरंभ के लिए 3 फरमान आवश्यक थे, यद्यपि उन्होंने कुरूश के पहले फरमान के साथ ही लौटना और पुनर्निर्माण प्रारंभ कर दिया था।
एज्रा के 7वें अध्याय में वो आज्ञा पाई जाती है, पद 12-26। अपने सर्वाधिक पूर्ण रूप में वो फारस के राजा अर्तक्षत्रा द्वारा 460 BC पूर्व में जारी की गई थी, परंतु एज्रा 6:14 में कहा गया है कि यरूशलेम में यहोवा का भवन कुरूश और दारैवेश और फारस के राजा अर्तक्षत्रा की आज्ञा हाशिए में फरमान के अनुसार बनाया गया था। इन 3 राजाओं ने उस आज्ञा को प्रारंभ करने, पुनः पुष्टि करने और पूर्ण करने के द्वारा उसे उस सिद्धता तक पहुंचाया जिसकी भविष्यवाणी के अनुसार 3300 वर्षों के आरंभ को चिह्नित करने के लिए आवश्यकता थी। 407 BC पूर्व को अर्थात उस समय को जब आज्ञा पूर्ण हुई उस आज्ञा की तिथि मानने पर 70 सप्ताहों के विषय में भविष्यद्वाणी की प्रत्येक विशेषता पूर्ण हुई पाई गई। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 326।
1798 से 1844 तक प्रकाशित वाक्य के 3 स्वर्गदूत भविष्य सूचक इतिहास में प्रकट हुए और जैसे 3 फरमानों ने 2300 वर्षों की भविष्यवाणी की शुरुआत को चिन्हित किया वैसे ही उन 3 स्वर्गदूतों ने उस भविष्यवाणी के समापन को चिन्हित किया। भविष्य सूचक काल 3रे स्वर्गदूत के आगमन के साथ समाप्त हुआ ठीक वैसे ही जैसे वो 3रे फरमान के आगमन के साथ आरंभ हुआ था क्योंकि यीशु सदा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से पहचानते हैं। यहूदी पहले फरमान के तहत लौटना शुरू हुए और 2रे फरमान के काल में उन्होंने मंदिर को पूरा किया। 3रा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1844 को आया और उस तिथि से पहले मिलराइटों ने उस आत्मिक मंदिर को पूरा कर लिया था जिसे वे आत्मिक बाबेल से निकलकर फिर से बनाने आए थे। उसका पूरा होना आवश्यक था क्योंकि 22 अक्टूबर 1844 को वाचा का दूत अपने मंदिर में अचानक आने वाला था। वो मंदिर मिलराइट लोग ही थे जिन्होंने 22 अक्टूबर 1844 को वाचा में प्रवेश किया और जिन्हें पतरस एक मंदिर ठहराता है।
तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर और पवित्र याजकता के रूप में बनाए जा रहे हो ताकि आत्मिक बलिदान अर्पित करो जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य हो। 1 पतरस 2:5।
मिलराइट मंदिर 1798 से 1850 तक बनाया गया था जो कि 46 वर्ष है या भविष्यवाणी की दृष्टि से 3 दिन क्योंकि मसीह ने बताया कि एक मंदिर को खड़ा करने में 3 दिन लगते हैं।
और यहूदियों का फसह निकट था और यीशु यरूशलेम गया और उसने मंदिर में बैल भेड़े और कबूतर बेचने वालों को और धन बदलने वालों को बैठे हुए पाया और छोटी छोटी रस्सियों से एक कोड़ा बनाकर उसने सबको मंदिर से निकाल दिया भेड़ों और बैलों को भी और धन बदलने वालों का पैसा बिखेर दिया और मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ मेरे पिता के घर को व्यापार का घर न बनाओ। तब उसके चेलों को शरण आया कि लिखा है तेरे घर के लिए जो जलन है वो मुझे खा गई है। तब यहूदियों ने उत्तर देकर उससे कहा जब तू ये काम करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु ने उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे फिर खड़ा कर दूंगा। तब यहूदियों ने कहा ये मंदिर 46 वर्ष में बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु वो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहा था। यूहन्ना 2:13-21।
सिस्टर वाई ये बताती हैं कि जैसा कि मलाकी की पुस्तक में दर्शाया गया है जब वाचा का दूत अचानक अपने मंदिर में आया तो वो भविष्यवाणी तब पूरी हो गई थी जब मसीह ने मंदिर को शुद्ध किया था जैसा कि अभी अभी यूहन्ना के अंश में संकेत किया गया है।
जब यीशु ने संसार के खरीदारों और बेचने वालों से मंदिर को शुद्ध किया तब उन्होंने ये घोषित किया कि उनका मिशन हृदय को पाप की अशुद्धता से पार्थिव इच्छाओं स्वार्थी वासनाओं और उन बुरी आदतों से जो आत्मा को भ्रष्ट करती हैं शुद्ध करना है। देखो मैं अपना दूत भेजूंगा और वो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अपने मंदिर में सहसा आ जाएगा अर्थात वाचा के दूत जिसमें तुम प्रसन्न होते हो। देखो वो आएगा सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। पर उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा और जब वो प्रकट होगा तो कौन ठहर सकेगा क्योंकि वो परखने वाले की आग के समान और धोबी के साबुन के समान है और वो चांदी को परखने वाले और शुद्ध करने वाले के समान बैठ जाएगा और वो लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी के समान परखेगा ताकि वे यहोवा के लिए धर्म में भेंट चढ़ाएं। मलाकी 3:1-3 युगों की अभिलाषा 101 से।
यूहन्ना के अध्याय 2 में वर्णित मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे और यीशु ने कहा कि वो नष्ट किए गए मंदिर को 3 दिनों में खड़ा कर देगा। 1798 से 1844 तक 46 वर्ष होते हैं और ये प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूतों दिन के आगमन की पहचान करता है जिन्हें उन तीन फरमानों द्वारा पूर्व छायित किया गया था, जिनसे 2300 वर्ष की भविष्यवाणी आरंभ हुई। ये 46 वर्ष वो अवधि है जिसमें मसीह ने मिलराइट मंदिर को खड़ा किया, क्योंकि उस समय से पहले आत्मिक पवित्र स्थान और आत्मिक इसराइल आत्मिक बाबेल द्वारा रौंदे गए थे। जब मसीह ने अपने सेवा कार्य के आरंभ में फसह के पर्व पर मंदिर को शुद्ध किया, तब वे मलाकी में वर्णित उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे जिसमें वाचा का दूत अपने मंदिर में अचानक आता है। 22 अक्टूबर 1840 को मसीह अपने मंदिर में अचानक आए और अपने विध्वस्त मंदिर का पुनर्निर्माण करने में उन्हें 46 वर्ष लग चुके थे।
मसीह का हमारे महायाजक के रूप में परम पवित्र स्थान में पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के लिए आना, जिसका दृश्य दानियल 8:14 में प्रस्तुत किया गया है, मनुष्य के पुत्र का अति प्राचीन के पास आना जैसा दानियल 7:13 में दिखाया गया है, और प्रभु का अपने मंदिर में आना जिसकी भविष्यवाणी मलाकी ने की थी, ये सब एक ही घटना के वर्णन हैं, और यही बात उस दृष्टांत में भी वर के विवाह में आने के द्वारा निरूपित की गई है, जिसका वर्णन मसीह ने मत्ती 25:10 कुआरियों के दृष्टांत में किया है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 600 दशमक।
पहला प्रकोप 1798 में समाप्त हुआ और अंतिम प्रकोप का अंत 1854 में हुआ। 46 वर्षों की उस अवधि का आरंभ जिसमें मसीह ने मिलेराइट मंदिर की स्थापना की अंत को दर्शाता था, क्योंकि आरंभ और अंत दोनों ही अपने लोगों के विरुद्ध परमेश्वर के प्रकोप के समाप्त होने से चिह्नित थे, क्योंकि यीशु सदैव किसी बात के अंत को उसके आरंभ से पहचानते हैं। हम अगले लेख में गैब्रियल द्वारा दानियल को दिया गया निर्देश का अध्ययन जारी रखेंगे।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लोगों के सामने खोली जानी चाहिए। बहुतों को ये सिखाया गया है कि ये एक मूलबंध पुस्तक है, परंतु ये केवल उन्हीं के लिए मूलबंध है जो सत्य और प्रकाश को अस्वीकार करते हैं। उसमें निहित सत्यों का प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उन घटनाओं के लिए तैयार होने का अवसर मिले जो बहुत शीघ्र होने वाली हैं। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश एक नाश होती हुई दुनिया के उद्धार की एकमात्र आशा के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम दिनों के संकट हम पर आ पड़े हैं और अपने कार्य में हमें लोगों को इस संकट की चेतावनी देनी है जिसमें वे हैं। भविष्यवाणी ने जिन गंभीर घटनाओं को शीघ्र घटित होने के रूप में प्रकट किया है उन्हें अनदेखा न करें। हम परमेश्वर के दूत हैं और हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी बनना चाहते हैं वे इस पुत्र में शयन करने के लिए सच्चाइयों में गहरी रुचि दिखाएंगे। कलम और वाणी के द्वारा वे अन अद्भुत बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे जिन्हें प्रकट करने के लिए मसीह स्वर्ग से आए थे। साइंस ऑफ द टाइम्स 4 जुलाई 1906।